ये आकाशवाणी है। अब आप अंजलि से समाचार सुनिए। सरकार ने कम मूल्य के भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आज एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना में छोटे व्यापारियों को 2,000 रूपये तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन मूल्य पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
1,500 करोड़ रूपीज की स्कीम है एंड एज पर दिस स्कीम जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2,000 रूपीज उसमें कोई ट्रांजेक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा और उसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो सारी की सारी एप्लीकेबल होगी।
सरकार ने असम के नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्तमान परिसर में एक नया ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र की वार्षिक क्षमता 12,70,000 मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन की होगी। सरकार ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्वीकृति दी है। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन 1,000 करोड़ रूपये के अतिरिक्त परिव्यय के साथ किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने महाराष्ट्र में जेएनपीए बंदरगाह से चौक तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि 4,500 करोड़ रूपये की लागत वाली यह परियोजना जेएनपीए पोर्ट और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़कर लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार के लिए बनाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि देशभर में 15,000 जन औषधि केंद्र हैं और सरकार ने अगले 2 वर्ष में 10,000 नए केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। राज्यसभा में चर्चा का उत्तर देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन केंद्रों में बहुत सस्ती दवाएं उपलब्ध होने के कारण अब तक रोगियों के 30,000 करोड़ रूपये की बचत हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का विषय उठाने पर आपत्ति व्यक्त की। गृहमंत्री ने कहा कि सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है और टीएमसी सदस्य को अपना भाषण केवल गृह मंत्रालय के कामकाज तक ही सीमित रखना चाहिए। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहन के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रही है। लोकसभा में श्री रिजिजू ने कहा कि उनका मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए देशभर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले जोखिमों और लत जैसे संभावित नुकसानों से अवगत है। लोकसभा में उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एआई दुनिया में बड़ा बदलाव ला रही है और पत्रकारिता सहित कई क्षेत्रों में नए अवसर तथा नई चुनौतियां पैदा कर रही है। नई दिल्ली में रामनाथ गोयंका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में उन्होंने डीप फेक और एआई के दुरुपयोगों के खतरे के बारे में सभी नागरिकों को संवेदनशील बनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक बिल गेट्स से भेंट की। उन्होंने श्री गेट्स के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। पंजाब के किसान और केंद्र तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता आज चंडीगढ़ में सकारात्मक रूप से संपन्न हुई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। 3 घंटे से अधिक चली चर्चा में किसानों की मांगों के विभिन्न कानूनी, आर्थिक और अन्य आयामों पर चर्चा की गई। अगली बैठक 4 मई को होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।